संबंध जो महापुरुष आदि पुरुष परमात्मा के शरण होकर परम पद को प्राप्त होते हैं उनके लक्षणों का वर्णन आगे के पांचवें श्लोक में करते हैं। निर्मान मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुःख संज्ञैर गच्छन्ति मूढाः पदमव्ययम् तत्।
जो मान और मोह से रहित हो गए हैं, जिन्होंने आसक्ति से होने वाले दोषों को जीत लिया है, जो नित्य निरंतर परमात्मा में ही लगे हुए हैं, जो अपनी दृष्टि से संपूर्ण कामनाओं से रहित हो गए हैं, जो सुख दुख रूप द्वंद्वों से मुक्त हो गए हैं, ऐसे ऊंची स्थिति वाले मोह रहित साधक भक्त उस अविनाशी परम पद परमात्मा को प्राप्त होते हैं। व्याख्या। निर्माण मोहः। शरीर में मैं मेरापन होने से ही मान आदर सत्कार की इच्छा होती है। शरीर से अपना संबंध मानने के कारण ही मनुष्य शरीर के मान आदर को भूल से स्वयं का मान आदर मान लेता है और फंस जाता है। जिन भक्तों का केवल भगवान में ही अपनापन होता है, उनका शरीर में मैं मेरापन नहीं रहता, अतः वे शरीर के मान आदर से प्रसन्न नहीं होते। एकमात्र भगवान के शरण होने पर उनका शरीर से मोह नहीं रहता, फिर मान आदर की इच्छा उनमें हो ही कैसे सकती है। केवल भगवान का ही उद्देश्य होने से, यानी ध्येय होने से, और केवल भगवान के ही शरण रहने से, यानी परायण रहने से, वे भक्त संसार से विमुख हो जाते हैं, अतः उनमें संसार का मोह नहीं रहता। जित संग दोषः। भगवान में आकर्षण होना प्रेम और संसार में आकर्षण होना आसक्ति कहलाती है। ममता, स्पृहा, वासना, आशा आदि दोष आसक्ति के कारण ही होते हैं। केवल भगवान के ही परायण होने के कारण भक्तों की सांसारिक भोगों में आसक्ति नहीं रहती। आसक्ति न रहने के कारण भक्त आसक्ति से होने वाले ममता आदि दोषों को जीत लेते हैं। आसक्ति प्राप्त और अप्राप्त दोनों की होती है, किंतु कामना अप्राप्त की ही होती है, इसलिए इस श्लोक में विनिवृत्त कामः पद अलग से आया है। अध्यात्म नित्यः। केवल भगवान के ही शरण रहने से भक्तों की अहंता बदल जाती है। मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, मैं संसार का नहीं हूँ और संसार मेरा नहीं है, इस प्रकार अहंता बदलने से उनकी स्थिति निरंतर भगवान में ही रहती है। यद्यपि मात्र प्राणियों की स्थिति निरंतर उसी सर्वव्यापक, सर्व प्रकाशक, सर्वेश्वर भगवान में ही रहती है, तथापि वे भूल से अपनी स्थिति भगवान में न मानकर संसार में मान लेते हैं। जैसे मैं अमुक वर्ण, आश्रम, संप्रदाय, नाम, जाति आदि का हूँ, अपनी इस विपरीत मान्यता के कारण ही वे बंध जाते हैं और बार बार जन्मते मरते हैं। कारण कि मनुष्य की जैसी अहंता होती है, उसकी स्थिति वहां ही होती है। जैसे मनुष्य जन्म के अनुसार अपने को ब्राह्मण मानता है, तो उसकी ब्राह्मणपन की मान्यता नित्य निरंतर रहती है, अर्थात वह नित्य निरंतर ब्राह्मणपन में स्थित रहता है, चाहे याद करे या न करे। ऐसे ही जो भक्त अपना संबंध केवल भगवान के साथ ही मानते हैं, वे नित्य निरंतर भगवान में ही स्थित रहते हैं। विनिवृत्त कामः। संसार का ध्येय रहने से, संसार का लक्ष्य रहने से ही संसार की वस्तु, परिस्थिति आदि की कामना होती है, अर्थात अमुक वस्तु, व्यक्ति आदि मुझे मिल जाए, इस तरह अप्राप्त की कामना होती है। परंतु जिन भक्तों का सांसारिक वस्तु आदि को प्राप्त करने का उद्देश्य है ही नहीं, वे कामनाओं से सर्वथा रहित हो जाते हैं। शरीर में ममता होने से कामना पैदा हो जाती है कि मेरा शरीर स्वस्थ रहे, बीमार न हो जाए, शरीर हृष्ट पुष्ट रहे, कमजोर न हो जाए। इसी से सांसारिक धन, पदार्थ, मकान आदि की अनेक कामनाएं पैदा होती हैं। शरीर आदि में ममता न रहने से भक्तों की कामनाएं मिट जाती हैं। भक्तों का यह अनुभव होता है कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहम यानी मैंपन, ये सभी भगवान के ही हैं। भगवान के सिवाय उनका अपना कुछ होता ही नहीं। ऐसे भक्तों की संपूर्ण कामनाएं विशेष और निशेष रूप से नष्ट हो जाती हैं। इसलिए उन्हें यहाँ विनिवृत्त कामः कहा गया है। विशेष बात, वास्तव में शरीर आदि का वियोग तो प्रतिक्षण हो ही रहा है। साधक को प्रतिक्षण होने वाले इस वियोग को स्वीकार मात्र करना है। इन वियुक्त होने वाले पदार्थों से संयोग मानने से ही कामनाएं पैदा होती हैं। जन्म से लेकर आज तक निरंतर हमारी प्राण शक्ति नष्ट हो रही है और शरीर से प्रतिक्षण वियोग हो रहा है। जब एक दिन शरीर मर जाएगा तब लोग कहेंगे कि आज यह मर गया। वास्तव में देखा जाए तो शरीर आज नहीं मरा है, प्रत्युत प्रतिक्षण मरने वाले शरीर का मरना आज समाप्त हुआ है। अतः कामनाओं से निवृत्त होने के लिए साधक को चाहिए कि वह प्रतिक्षण वियुक्त होने वाले शरीर आदि पदार्थों को स्थिर मानकर उनसे कभी अपना संबंध न माने। वास्तव में कामनाओं की पूर्ति कभी होती ही नहीं। जब तक एक कामना पूरी होती हुई दिखती है तब तक दूसरी अनेक कामनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। उन कामनाओं में से जब किसी एक कामना की पूर्ति होने पर मनुष्य को सुख प्रतीत होता है तब वह दूसरी कामनाओं की पूर्ति के लिए चेष्टा करने लग जाता है। परंतु यह नियम है कि चाहे कितने ही भोग पदार्थ मिल जाएं, पर कामनाओं की पूर्ति कभी हो ही नहीं सकती। कामनाओं की पूर्ति के सुख भोग से नई नई कामनाएं पैदा होती रहती हैं। जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई। संसार के संपूर्ण व्यक्ति पदार्थ एक साथ मिलकर एक व्यक्ति की भी कामनाओं की पूर्ति नहीं कर सकते। फिर सीमित पदार्थों की कामना करके सुख की आशा रखना महान भूल ही है। कामनाओं के रहते हुए कभी शांति नहीं मिल सकती। स शांति मापनोति न काम कामी। अतः कामनाओं की निवृत्ति ही परम शांति का उपाय है। इसलिए कामनाओं की निवृत्ति ही करनी चाहिए, न कि पूर्ति की चेष्टा। सांसारिक भोग पदार्थों के मिलने से सुख होता है, यह मान्यता कर लेने से ही कामना पैदा होती है। यह कामना जितनी तेज होगी उस पदार्थ के मिलने में उतना ही सुख होगा। वास्तव में कामना की पूर्ति से सुख नहीं होता। जब मनुष्य किसी पदार्थ के अभाव का दुख मानकर कामना करके उस पदार्थ का मन से संबंध जोड़ लेता है तब उस पदार्थ के मिलने पर अर्थात उस पदार्थ का मन से संबंध विच्छेद होने पर अभाव की मान्यता का दुख मिट जाने पर सुख प्रतीत होता है। यदि वह पहले से ही कामना न करे तो पदार्थ के मिलने पर सुख और न मिलने पर दुख होगा ही नहीं। मूल में कामना की सत्ता है ही नहीं, क्योंकि जब काम्य पदार्थ की ही स्वतंत्र सत्ता नहीं है तब उसकी कामना कैसे रह सकती है। इसलिए सभी साधक निष्काम होने में समर्थ हैं। द्वंद्वैर विमुक्ताः सुख दुख संज्ञैः। वे भक्त सुख दुख हर्ष शोक राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित हो जाते हैं। कारण कि उनके सामने अनुकूल प्रतिकूल जो भी परिस्थिति आती है उसको वे भगवान का ही दिया हुआ प्रसाद मानते हैं। उनकी दृष्टि केवल भगवत कृपा पर ही रहती है, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति पर नहीं। अतः जो कुछ होता है वह हमारे प्यारे प्रभु का ही मंगलमय विधान है। ऐसा भाव होने से उनके द्वंद्व सुगमता पूर्वक मिट जाते हैं। भगवान सबके सुहृद हैं, सुहृदम सर्वभूतानां। उनके द्वारा अपने अंश का यानी जीवात्मा का कभी अहित हो ही नहीं सकता। उनके मंगलमय विधान से जो भी परिस्थिति हमारे सामने आती है वह हमारे परम हित के लिए ही होती है। इसलिए भक्त भगवान के विधान में परम प्रसन्न रहते हैं। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि को अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति का ज्ञान होने पर भी ऐसी परिस्थिति क्यों आ गई, ऐसी परिस्थिति आती रहे आदि विकार द्वंद्व उनमें नहीं होते। विशेष बात, द्वंद्व यानी राग द्वेष आदि ही विषमता है जिनसे सब प्रकार के पाप पैदा होते हैं। अतः विषमता का त्याग करने के लिए साधक को नाशवान पदार्थों के माने हुए महत्व को अंतःकरण से निकाल देना चाहिए। द्वंद्व के दो भेद हैं, स्थूल द्वंद्व यानी व्यावहारिक द्वंद्व, सुख दुख अनुकूलता प्रतिकूलता आदि स्थूल द्वंद्व हैं। प्राणी सुख अनुकूलता आदि की इच्छा तो करते हैं पर दुख प्रतिकूलता आदि की इच्छा नहीं करते, यह स्थूल द्वंद्व मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष आदि सभी में देखने में आता है। सूक्ष्म द्वंद्व यानी आध्यात्मिक द्वंद्व, यद्यपि अपनी उपासना और उपास्य को सर्वश्रेष्ठ मानकर उसको आदर देना अर्थात महत्व देना आवश्यक एवं लाभप्रद है, तथापि दूसरों की उपासना और उपास्य को नीचा बताकर उसका खंडन निंदा आदि करना सूक्ष्म द्वंद्व है जो साधक के लिए हानिकारक है। वास्तव में सभी उपासनाओं का एकमात्र उद्देश्य संसार से यानी जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद करना है। साधकों की रुचि श्रद्धा विश्वास और योग्यता के अनुसार उपासनाओं में भिन्नता होती है जिसका होना उचित भी है। अतः साधक को उपासनाओं की भिन्नता पर दृष्टि न रखकर उद्देश्य की अभिन्नता पर ही दृष्टि रखनी चाहिए। दूसरे की उपासना को न देखकर अपनी उपासना में तत्परता पूर्वक लगे रहने से उपासना संबंधी सूक्ष्म द्वंद्व स्वतः मिट जाता है। गीता में स्थूल द्वंद्व को मोह कलिलम और सूक्ष्म द्वंद्व को श्रुति विप्रतिपन्ना पदों से कहा गया है। श्रुति विप्रतिपन्न का अर्थ है शास्त्रों में ज्ञान कर्म और भक्ति, द्वैत अद्वैत शुद्धाद्वैत द्वैताद्वैत आदि सिद्धांत, विष्णु राम कृष्ण शिव शक्ति गणेश आदि उपास्य देव, सकाम और निष्काम भाव इत्यादि भिन्न भिन्न विचारों को देखकर किसी एक विचार पर अपना निश्चय या निर्णय नहीं कर सकना अर्थात किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाना। साधक के अंतःकरण में जब तक संसार का यानी जड़ता का संबंध या महत्व रहता है तभी तक ये द्वंद्व रहते हैं। स्थूल द्वंद्व संसार को विशेष रूप से सत्ता और महत्ता देता है, अतः स्थूल द्वंद्व को मिटाना बहुत जरूरी है। जब तक मूढ़ता रहती है तभी तक द्वंद्व रहते हैं। वास्तव में देखा जाए तो अपने में द्वंद्व मानना ही मूढ़ता है। राग द्वेष सुख दुख हर्ष शोक आदि द्वंद्व अंतःकरण में होते हैं, स्वयं अपने स्वरूप में नहीं। अंतःकरण जड़ है और स्वयं चेतन एवं जड़ का प्रकाशक है, अतः अंतःकरण से स्वयं का संबंध है ही नहीं, केवल मान्यता से ही यह संबंध प्रतीत होता है। यह सभी का अनुभव है कि सुख दुख आदि द्वंद्वों के आने पर हम तो वही रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि सुख आने पर हम और होते हैं तथा दुख आने पर और, परंतु मूढ़तावश इन सुख दुख आदि से मिलकर सुखी और दुखी होने लगते हैं। यदि हम इन आने जाने वालों से न मिलकर अपने स्वरूप में स्थित रहें यानी स्वरूप में स्वस्थ रहें तो सुख दुख आदि द्वंद्वों से स्वतः रहित हो जाएंगे। इसलिए साधक को बदलने वाली अर्थात आने जाने वाली अवस्थाओं पर यानी सुख दुख हर्ष शोक आदि पर दृष्टि न रखकर कभी न बदलने वाले अपने स्वरूप पर ही दृष्टि रखनी चाहिए जो सब अवस्थाओं से अतीत है। गीता में भगवान ने राग द्वेष आदि द्वंद्वों से मुक्त होने का बड़ा सुगम उपाय बताया है कि अनुकूलता प्रतिकूलता में राग द्वेष छिपे हुए हैं, उनसे बचने के लिए साधक को केवल इतनी सावधानी रखनी है कि वह इनके वश में न हो। तात्पर्य यह है कि राग द्वेष दिखने पर भी साधक इनके वशीभूत होकर तदनुसार क्रिया न करे, क्योंकि क्रिया करने से ही ये पुष्ट होते हैं। गच्छन्त्य मूढ़ाः पदम अव्ययम् तत्। आने जाने वाले पदार्थों को प्राप्त करने की इच्छा या चेष्टा करना तथा उनसे सुखी दुखी होना मूढ़ता है। वास्तव में संसार निरंतर परिवर्तनशील है और परमात्मा नित्य रहने वाला है। परमात्मा की सत्ता से ही संसार की सत्ता दिखती है, परंतु अविनाशी परमात्मा और विनाशी संसार की सत्ता को मिलाकर संसार है ऐसा मान लेना मूढ़ता है। जिस प्रकार मूढ़ मनुष्यों को यानी अज्ञानी मनुष्यों को संसार है ऐसा स्पष्ट दिखाई देता है, उसी प्रकार अमूढ़ भक्तों को यानी मोह रहित भक्तों को परमात्मा है ऐसा स्पष्ट अनुभव होता है। संसार जैसा दिखाई देता है वैसा ही है, इस प्रकार संसार को स्थाई मान लेना मूढ़ता है, मोह है। जिनकी यह मूढ़ता चली गई उन भक्तों को यहाँ अमूढ़ाहा कहा गया है। मूढ़ता चले जाने के बाद सुख दुख का असर नहीं पड़ता। जिस पर सुख दुख आदि द्वंद्वों का असर नहीं पड़ता वह मुक्ति का पात्र होता है। इसीलिए इस श्लोक में भगवान ने निर्माण मोहा और अमूढ़ाहा दो बार मूढ़ता के त्याग की बात कहकर मूढ़ता के त्याग पर विशेष जोर दिया है। मूढ़ता अर्थात मोह दो प्रकार का होता है, परमात्मा की ओर न लगकर संसार में ही लग जाना और परमात्मा को ठीक तरह से न जानना। इस श्लोक में पहले निर्माण मोहा पद से संसार का मोह चले जाने की बात कही है और यहाँ अमूढ़ा पद से परमात्मा को ठीक तरह से जान लेने की बात कही है। जैसे निर्गुण तत्व को जानने वाला अमूढ़ यानी मोह रहित हो जाता है, ऐसे ही सगुण साकार को दृढ़ता पूर्वक मानने वाला भी अमूढ़ हो जाता है। जिस परमात्मा को इसी अध्याय के पहले श्लोक में ऊर्ध्व मूलम पद से कहा गया तथा जिस परम पद रूप परमात्मा की खोज करने के लिए चौथे श्लोक में प्रेरणा की गई और आगे छठे श्लोक में जिसकी महिमा का वर्णन किया गया है, उसी परमात्मा रूप परम पद को यहाँ अव्ययम पदम कहा है। जो ऊंची स्थिति के साधक भक्त मान मोह ममता आदि दोषों से सर्वथा रहित हो जाते हैं वे उस अविनाशी परम पद को अवश्य प्राप्त होते हैं, जिसको प्राप्त कर लेने पर मनुष्य लौट कर नाशवान संसार में नहीं आता। वास्तव में तो मनुष्य मात्र उस पद को स्वतः प्राप्त है, पर उधर दृष्टि न रहने से उसको वैसा अनुभव नहीं होता। इसे एक उदाहरण से समझना चाहिए। हम रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे हैं, हमारी गाड़ी एक स्टेशन पर रुक जाती है, हमारी गाड़ी के पास दूसरी पटरी पर खड़ी हुई दूसरी गाड़ी सहसा चलने लगती है। उस समय उस चलती हुई गाड़ी पर दृष्टि रहने से भ्रम से हमें अपनी गाड़ी चलती हुई दिखने लगती है, परंतु जब हम वहां से अपनी दृष्टि हटाकर स्टेशन की तरफ देखते हैं तब पता लगता है कि हमारी गाड़ी तो ज्यों की त्यों अपने स्थान पर खड़ी हुई है। इसी प्रकार संसार से संबंध होने पर मनुष्य अपने को संसार की तरह क्रियाशील यानी आने जाने वाला देखने लगता है, पर जब वह संसार से दृष्टि हटाकर अपने स्वरूप को देखता है तब उसको पता लगता है कि मैं स्वयं तो ज्यों का त्यों ही हूँ।